Which way do you face?
आपका मुंह किस ओर होता है? अध्यक्ष बॉयर के पैकर के उलझन भरे प्रश्न से मैं उस समय चकित हो गया जब हम नए सत्र के रूप में मेरी नियुक्ति के पहले कार्यभार की यात्रा कर रहे थे। प्रश्न के संदर्भ की व्याख्या न होने के कारण मैं उलझन में पड़ गया था। एक सत्र, उन्होंने कहा, भविष्यवक्ता के लिए लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि लोगों के लिए भविष्यवक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। कभी ना भूलें आपका मुख्य स्रोत होना चाहिए। यह एक प्रभावशाली पाठ था। परमेश्वर के सामने दूसरों को खुश करने का अर्थ है पहली और दूसरी बड़ी आज्ञाओं के विपरीत करना। यह किस ओर हमारा मुंह करना चाहिए नहीं भूलना है। और फिर भी हम सब मनुष्य के भय इस कारण गलती करते हैं। इजाया में प्रभु हमें चेतावनी देता है, तुम लोगों की नाम धराई से मत डरो। लिहाई के सपने में यह भय उन लोगों द्वारा मजाक उड़ाए जाने के कारण शुरू हुआ था जो बड़े विशाल भवन में उसकी ओर उंगली उठा रहे थे। इस कारण बहुत से लज्जित होकर भूल गए कि किस ओर मुंह करके वृक्ष की तरफ जाना और वापस आना है। साथ ही हुए दबाव व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करता है। यदि व्यवहार को ना भी करें उसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को गलत काम करने का दोषी महसूस करता है। हम उनके साथ सम्मानजनक संबंध रखने का प्रयास करते हैं जो उंगलियां उठाते हैं। ये फंदा बड़ी चलाकी से हमारी संवेदनशीलता को आकर्षित करता है जिससे प्रभावित होकर हम उस कार्य को करने लगते हैं जिसकी परमेश्वर निंदा करता है। जिनका विश्वास कमजोर होता है उनके लिए यह बहुत बड़ी ठोकर का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए कुछ नौजवान प्रचारक लोगों के इस भय को प्रचार क्षेत्र में लेकर आते हैं और अपने साथी के गंभीर आलोचना को वे मिशन अध्यक्ष को नहीं बताते क्योंकि वे अपने गलत साथी को नाराज करना नहीं चाहते। चरित्र के निर्णय पहली और दूसरी बड़ी आज्ञाओं को सही क्रम में याद रखने में बनाए जाते हैं। जब ये लूझन में पड़े प्रचारक महसूस करते हैं कि वे परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हैं न कि उनके साथी के प्रति, तो वे सही दिशा की ओर मुंह करते हैं। जवानी के 22वें साल में जोसेफ स्मिथ भी भूल गए थे कि उन्हें किस ओर मुंह करना था जब उन्होंने पुस्तक के 116 पृष्ठों को मार्टिन हैरिस को देने के लिए बार बार प्रभु की अनुमति मांगी थी। शायद जोसेफ स्मिथ मार्टिन हैरिस को उसकी सहायता के प्रति आभार प्रकट करना चाहते थे। हम जानते हैं कि जोसेफ उनके विरुद्ध फैलाई जा रही गलत और झूठी बातों के समय अनचिंतित गवाहों का उनके साथ खड़े होने को लेकर वह बहुत चिंतित थे। जोसेफ के कोई भी कारण रहे हों या जितने भी वे उचित लगते हों, प्रभु ने उन्हें क्षमा नहीं किया और उससे कठोर शब्दों में कहा था, कितनी बार तुमने गलती की है और मनुष्य के अत्याचारों को सहा है, क्योंकि देखो तुमने मनुष्य से अधिक परमेश्वर से भय करना चाहिए। इस मार्मिक अनुभव ने जोसेफ को इसके बाद हमेशा स्मरण रखने में मदद की थी कि उसे किस ओर मुंह करना चाहिए। जब व्यक्ति मनुष्य के हाथ लज्जित होने से बचने की कोशिश करते हैं तो वे अनजाने में परमेश्वर के सम्मुख लज्जित होते हैं। व्यक्ति सोच सकता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना उसी दौरान लोगों की अवज्ञा को नजरअंदाज करना निष्पक्षता नहीं बल्कि दुराहपन या दो चेहरे रखना या दो स्वामियों की सेवा करने का प्रयास करना है। निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन साहस की असली पहचान मनुष्य के भय पर विजय पाने से होती है। उदाहरण के लिए डैनियल की प्रार्थनाओं ने शेरों का सामना करने में मदद की थी, लेकिन दारा को हराने की सोच से उसे बहादुर बनाया था। इस प्रकार का साहस परमेश्वर का भय रखने वालों के लिए आत्मा का उपहार है जो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। रानी एस्तर की प्रार्थनाओं ने उसे ऐसा ही साहस दिया था जब उसने अपने पति राजा शेरश का यह जानते हुए सामना किया था कि उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। साहस मात्र एक मूलभूत गुण नहीं है बल्कि जैसा सी.एस. लुईस ने देखा था, साहस प्रत्येक गुण की परीक्षा का क्षण है। पिलातुस के लिए यह तब तक दयापूर्ण था तब तक जोखिम भरा नहीं हो गया। राजा हेरोदस यूहन्ना बपतिस्मा देने का सिर काटने के अनुरोध के कारण दुखी था, लेकिन उन्हें खुश करना चाहता था जो उसके साथ बैठे थे। राजा नोआ अभिनंदी को स्वतंत्र करने के लिए तैयार था, लेकिन अपने दुष्ट याजकों के कारण उसने ऐसा नहीं किया। राजा शाऊल ने प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया था। सियोन पर्वत की तलहटी पर विरोधी इसराइलों को शांत करने के लिए हारून ने सोने का बछड़ा बनाया था। वह यह भूल गया था कि उसे किस तरह मुंह करना था। नए नियम के बहुत से मुख्य शासक प्रभु पर विश्वास करते थे, लेकिन फरीसियों के कारण उन्होंने इसका स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे भयभीत थे कि कहीं उन्हें आराधनालय से बाहर न कर दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक वे मनुष्य की प्रशंसा चाहते थे। धर्मशास्त्र ऐसे बहुत से उदाहरणों से भरे हुए हैं। देखो, मैं निर्भीकता से बोलता हूँ और मैं नहीं डरता कि लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि परिपूर्ण प्रेम सारा डर दूर कर देता है। नीफाय, इसीलिए जो बातें संसार को पसंद है मैं उन्हें नहीं लिखूंगा, लेकिन जो बातें परमेश्वर को पसंद है जो संसार को नहीं है उन्हें लिखूंगा। सेनापति मोरोनाय, देखो मैं मोरोनाय तुम्हारा मुख्य सेनापति हूँ। मैं सत्ता नहीं चाहता परंतु उसे अलग रखना चाहता हूँ। मैं संसार का गौरव नहीं परंतु अपने परमेश्वर की महिमा और अपने देश की स्वतंत्रता और उसका कल्याण चाहता हूँ। मोरोनाय उसे याद करने में बहुत साहसी था जिसने उसका सामना किया था कि उसके विषय में यह कहा गया था, यदि सारे मनुष्य मोरोनाय के सामने के समान रहे और थे और कभी भी होंगे तो देखो नरक की शक्तियां सदा के लिए नष्ट हो जाती। हाँ, शैतान मानव संतान की हृदय को कभी भी अपने वश में नहीं कर पाता। युगों से भविष्यवक्ता का हमेशा उंगली उठाकर मजाक उड़ाकर आक्रमण किया गया है। क्यों? धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि अपराधी सत्य को कठोर मानते हैं, क्योंकि उन्हें यह मध्य से काटती है। या अध्यक्ष भैरव बिल्ली ने देखा था, जब चिड़िया पर चोट लगती है तो वह फड़फड़ाती है। उनकी मजाक भरी प्रतिक्रिया वास्तव में अपराध को स्वयं स्वीकार करने की कोशिश है, ठीक जैसे कोरियर ने आखिर में स्वीकार किया था, मैं सदा से जानता था कि परमेश्वर था। कोरियर अपने धोखे से इतना निश्चित था कि उसने अपने झूठ पर विश्वास कर लिया था। मजाक उड़ाने वाले अक्सर भविष्यवक्ता पर दोष लगाते हैं कि वर्तमान समय से ये नहीं होते या अत्याचार करते हैं, वे उकसाने का प्रयास करते और यहाँ तक कि गिरजे के को परमेश्वर के मानकों का नीचा दिखाकर अपने स्वयं के अनुचित व्यवहार के स्तर तक लाने के लिए दबाव डालते हैं, जो कि एल्डर नील ए मैक्सवेल के शब्दों में आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाता है, न कि आत्मोन्नति और पश्चाताप की ओर। प्रभु के मानकों को समाज के स्तर तक नीचा करने का अनुचित व्यवहार परमेश्वर की निंदा है। नफाइयों के बीच बहुत से गिरजों ने उद्धारकर्ता के उनसे भेंट करने के 2 शताब्दियों पश्चात सिद्धार्थ का सरलीकरण आरंभ कर दिया था। एल्डर हॉलैंड के वाक्यांश को लिया गया है, जब आप 4वीं नफी के इस अंश को सुनते हैं, इसकी समय हमारी समय की बातों से तुलना करें, और ऐसा हुआ था कि जब 200 वर्ष बीत गए तब तक प्रदेश में कई गिरजे हो चुके थे। हाँ, कई गिरजे हो गए थे जो मसीह की घोषणा करते थे और फिर भी वे उसके सुसमाचार के अधिकांश भाग को नकारते थे, इतना अधिक कि उनमें से हर प्रकार की बुराई आ गई और ऐसी चीजें करने लगे जो उनके लिए पावन थी और जिसे अयोग्यता के कारण वर्जित किया गया था। ऐसे ही बातें आजकल हो रही हैं। कुछ सदस्य नहीं जानते थे कि उसी फंदे में फंस रहे हैं जब वे अपने पूर्वजों की उन परंपराओं को स्वीकार करने के लिए प्रभावित होते हैं जो सुसमाचार संस्कृति के अनुकूल नहीं हैं। फिर भी कुछ आत्मछल और आत्मत्याग वच याचना या मांग करते हैं कि धर्माध्यक्ष मंदिर, अनुशंसा विद्यालय या प्रचारक आवेदन के लिए स्तर कम कर दें। इस दबाव में धर्माध्यक्ष बने रहना सरल नहीं है। फिर भी जिस प्रकार उद्धारकर्ता ने मंदिर की पवित्रता को बचाने के लिए उसकी सफाई की थी, आज धर्माध्यक्षों को साहस से मंदिर के स्तर को बचाने के लिए कहा जाता है। यह उद्धारकर्ता ही जिसने कहा था, मैं अपने लोगों पर अपने आप को दया में प्रकट करूंगा यदि मेरे लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते और इस पवित्र घर को अशुद्ध नहीं करते। उद्धारकर्ता हमारे महान उदाहरण ने हमें हमेशा पिता की ओर मुंह किया है। उसने अपने साथियों से प्रेम और उनकी सेवा की थी, लेकिन कहा था, मुझे लोगों से कोई सम्मान नहीं चाहिए। वह उनसे चाहता था कि जिन्हें वह शिक्षा देता है, लेकिन वह उनकी प्रशंसा नहीं चाहता था। जब उदारता का कार्य करता था, जैसे चंगा करना, उसके साथ अक्सर एक निवेदन होता था, किसी से न कहना, कुछ हद तक ऐसा प्रसिद्धि ना पाने के लिए करना जो कि उससे बचने के लिए बावजूद मिली भी थी। उसने दोष लगाया था कि फरीसी अच्छे कार्य मात्र लोगों को दिखाने के लिए करते थे। उद्धारकर्ता एकमात्र परिपूर्ण व्यक्ति अत्यंत निडर था। उनके जीवन में उसने बहुत से दोष लगाने वालों के घावों का सामना किया था, लेकिन वह कभी उनकी उंगली उठाए जाने से दबाव में नहीं आया। वही एकमात्र व्यक्ति है जो एक बार भी नहीं भूला कि उससे किस ओर मुंह करना था। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे पिता प्रसन्न होता है, और मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा को चाहता हूँ। 3 नेफाई अध्याय 11 और 3 नेफाई अध्याय 28 के बीच उद्धारकर्ता ने पिता शब्द का कम से कम 163 बार उपयोग किया था। इसने नफाइयों को बहुत स्पष्ट किया था कि वह अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हर संभव तरीके से वह अपने पिता का परिपूर्ण शिष्य था। वह अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने में इतना परिपूर्ण था कि उद्धारकर्ता को जाना संक्षेप में
to see the Son was to have seen the Father. To hear the Son was to hear the Father. He had, in essence, become indistinguishable from his
Father. संक्षेप में वह पिता से किसी तरह से अलग किए जाने के योग्य नहीं था. उसका पिता वह एक थे. वह अच्छी तरह जानता था कि उसे किस तरफ मुंह करना चाहिए था. यह मेरी प्रार्थना है कि उसका उदाहरण हम दूसरों की चापलूसी के फंदों या अपने स्वयं के धोखे में फंसने की हिम्मत से की हिम्मत दें. यह हमें डराने वालों से कभी न डरने न ही राजी होने का साहस दे. यह हमें बिना नाम कमाए भलाई का काम करते रहने की प्रेरणा दे, न कि लोगों का आदर पाने के लिए. और उसके अतुलनीय उदाहरण हमेशा याद रखने में मदद करे कि पहली और महान आज्ञा कौन सी है. जब दूसरे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करने की मांग करते हैं तो हम हमेशा याद रखें कि हम किसके शिष्य हैं और हमारा मुंह किस ओर होना चाहिए. यीशु मसीह के नाम में आमीन.